ओम शांति। माँ बाप के ऊपर हम बच्चे बलिहार जाते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पण कर देते हैं और साथ साथ हम अपनी बुराइयां, कमियां, विकार सब स्वाहा कर देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को पावन बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, तो ब्राह्मणों का मुख्य लक्ष्य है अपने जीवन को सतो प्रधान पावन बनाना है। अपने जीवन को पवित्र निर्विकारी बनाना है। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे लगाव, प्रभाव और झुकाव से मुक्त हो, हम जानते हैं सब विकारों की जो जड़ है दे अभिमान, और पवित्र बनने का मूल कारण है देही अभिमानी बनना। परंतु जब हम लौकिक में होते हैं तो देखा गया है कि स्पेशली माताओं का पति से और बच्चों से लगाव होता है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा जब सोचते हैं तो लगाव हो जाता है। फिर चाहे व्यक्ति है, चाहे वैभव है, चाहे लौकिक है, चाहे अलौकिक। कई बार क्या होता है, लौकिक से हम न्यारे हो जाते हैं, लगाव मुक्त हो जाते हैं, परंतु जिसका संस्कार लगाव का है ना, लौकिक से तोड़ के अलौकिक से जोड़ देते हैं, और जहां लगाव है वहां एक तो अधीनता है, एक दो का आधार लेते हैं और उस व्यक्ति से अलग हो जाते हैं तो दुख होता है, उस व्यक्ति को कुछ तकलीफ होती है, बीमार है, मर जाता है तो बहुत दुख होता है। जिससे लगाव है उसने यदि शरीर छोड़ दिया तो फिर देखते हैं कि वो सालों तक रोते रहते हैं याद करके। हमारे पास एक मॉरिशियस में माता थी, उसने अपने पति के कपड़े संभल के रखे थे कबट में, तो सालों तक 10-11 साल के बाद भी जब भी वो कबट खोलती थी रोती थी। और एक माता थी, कहती थी मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, अभी वो अमेरिका में है, उसको तो जलेबी नहीं मिलती तो मैं भी जलेबी नहीं खाती। तो ऐसे हो जाता है कि इतना दुखी हो जाते हैं और जब लगाव होता है ना तो अपेक्षा रहती है। अच्छा मेरा बेटा आपको यही स्टडी करनी है, तो उनकी पढ़ाई का निर्णय माँ बाप लेते हैं। तो इसी रीत से देखा गया है कि कई बार बच्चा बीमार है, बेहोश है, तो माँ बाप परेशान होते हैं। बच्चा तो बेहोश है, उसको कुछ मालूम नहीं, परंतु माँ बाप परेशान है। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारा रहो और प्यारा रहो। बाबा के बच्चे हैं ये बुद्धि में रखो, जो भी है लौकिक को अलौकिक समझो, अपने को गृहस्थी नहीं समझो, ट्रस्टी समझो। और अपना सर्व संबंध बाप से, बाबा ही हमारा बच्चा है, बाबा ही हमारा पति है, बाबा ही हमारा संसार है। जब ये बुद्धि में आ जाएगा तो क्या होगा, उनसे न्यारा, लौकिक से न्यारा हो जाएंगे। और प्यार भले करो, अपनी जिम्मेवारी भी निभाओ, परंतु मेरापन ना हो। तो लगाव छूटने से जिम्मेवारी बाप को देने से हम हल्का रहेंगे और हल्के व्यक्ति बाबा को सहज याद कर सकेंगे। और अपनी उन्नति भी करेंगे, जिम्मेवारी भी निभाएंगे। फिर दूसरा है प्रभाव, ये भी काम विकार का सूक्ष्म रूप है, प्रभावित होना। किसी का व्यक्ति का पर्सनालिटी अच्छी है, सेवा में मददगार है और वो देखने में सुंदर है या अलौकिक में देखेंगे वो ज्ञान देने में कुशल है, योग में अच्छा है, तो क्या होता है, ब्राह्मण प्रभावित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये विशेषता उनको बाबा ने दी है। जब ये याद रहे कि बाबा ने उनको विशेष बनाया है तो बाबा की महिमा गानी चाहिए, ना कि व्यक्ति ने व्यक्ति की। और आजकल तो देखो हर एक चीज में आजकल ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। टेक्नोलॉजी में देखो तो भी कितना हम आगे बढ़ गए हैं। कहा देखो कितनी नई नई प्रकार की और BMW मर्सिडीज आदि आदि मिल रही है, मोटर बाइक भी लेटेस्ट मिल रही है, मकान भी देखो कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, आर्किटेक्ट भी अच्छा बन रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग हैं वो देखकर प्रभावित हो जाते हैं, कहेंगे वाह बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी मोटर बाइक है, बहुत अच्छा टेलीविजन सेट है, बहुत बड़ा स्क्रीन है। तो लोग हैं प्रभावित हो जाते हैं। तो ये देखना है अच्छा है, पर हमें उसको अप्रिशिएट करना है ना, कुछ अच्छा है अप्रिशिएट करना है, परंतु प्रभावित होकर जब प्रभावित हो जाते हैं ना वाह तो आंखें बड़ी हो जाती है और चेहरा खिल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रभावित ना होना चाहिए, क्योंकि आज कोई भाषण अच्छा करता है, बाबा ने विशेष उनको शक्ति दी है तो नेचुरली है बाबा ने उनको विशेष बनाया है। कोई अच्छा योग कराता है, बाबा ने उनको शक्ति दी है तो बाबा के प्रति बुद्धि जानी चाहिए, ना कि व्यक्ति के प्रति। यदि व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो क्या है, ये अपवित्रता है। क्या है कि ज्ञान के पहले ऑस्ट्रेलिया में कई म्यूजिशियन ज्ञान में आए और वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि ज्ञान के पहले जब फर्स्ट डे इनॉग्रेशन होता था और रिपोर्टर्स उनका रिपोर्ट निकालते थे तो वो लोग थोड़ा नर्वस हो जाते थे कि क्या रिपोर्ट निकलेगा। और फिर जब ज्ञान में आए तो कॉन्फिडेंस होता गया। इतने तक के लोग हैं, वो ब्राह्मण हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो लौकिक एक्सपर्ट को भी कॉन्फिडेंस दिलाते थे। माता कहाँ है आपका मास्क? कहाँ है? बैठते हैं सामने और मास्क नहीं पहनते हैं। क्यों बैठते हैं सामने? पीछे जाओ माता, मास्क नहीं पहनना है तो। कितनी बार कहना पड़ता है रोज, सामने बैठकर मास्क नहीं पहनते। तो इसलिए देखना है कि हमें किसी से भी प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा नहीं करनी है, परंतु बुद्धि में रहे अप्रिशिएट करना है कि हाँ आपने अच्छा किया, परंतु बाबा ने इनको ऐसा बनाया। और तीसरा है झुकाव। भक्ति में हम गुरुओं के सामने, देवताओं के सामने, बड़ों के सामने झुकते रहे। कन्याएं, आज भी बाबा कहते हैं ना, शादी के पहले माँ बाप उसके सामने झुकते थे, नवरात्रि में माँ बाप उनकी पूजा करते थे, और अभी शादी की बहू घर में आई, पहला काम करना पड़ता था सासु को पांव को छुओ, ससुर को, जिठानी को, ननंद को, पति को, सबको पांव को छूना पड़ता है। और मंदिरों में देवताओं का चरण स्पर्श करते हैं, गुरुओं का चरण स्पर्श करते, कभी कभी चरण धुलाई करके पानी भी पीते हैं। तो इस रीत से देखा गया है कि जैसे पतित बनते हैं तो पवित्र के आगे झुकते हैं, साष्टांग दंडवत भी प्रणाम करते हैं। तो बाबा ने हमको ब्राह्मणों को विशेष पावन बनने की शिक्षा दी है कि सतो प्रधान बनो, पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा ने हमें शिक्षा दी है पवित्र बनो, योगी बनो। जितना हम पवित्र बनते जाएंगे झुकने के संस्कार छूट जाएंगे। देवताओं के सामने भी झुकेंगे नहीं, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जाएंगे। हमको मालूम है लक्ष्मीनारायण कौन थे, कब थे, क्या थे, कैसे बने, तो उनके लिए रिगार्ड है। और ये भी बुद्धि में है कि कल जाकर हम ऐसे बनेंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाना है, जो झुकना ना पड़े। तो इसके लिए हमें योग द्वारा अपने आप को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। ईगो छोड़कर नम्र बनना है। तो जितना अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करके योग द्वारा शक्ति लेकर और अपनी विशेषता बाबा की गिफ्ट है ये समझकर चलेंगे तो नम्रता आ जाएंगे। देहभान छोड़कर देही अभिमानी बनना है, ये मुख्य है। देही अभिमानी बनना, अपने को आत्मा समझ, देह के संबंधियों को भूल। बाबा कहते हैं मुझे एक को याद करो। तो जितना देही अभिमानी बनेंगे तो सब विकार छूट जाएंगे। काम महाशत्रु है, तो काम के जो सूक्ष्म रूप है वो भी छोड़ने हैं, क्योंकि प्रभावित होना, आकर्षित होना, इच्छा होने, फैमिलियर, नाम रूप में फंसना, ये सब सूक्ष्म रूप है काम विकार का। वो छोड़ के पवित्र रूहानी प्यार, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। लगाव तो छोड़ना है, लोभ छोड़ना है। कोई भी प्रकार में इच्छा न हो, संतुष्ट रहना है और ज्यादा चाहिए 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 न हो, और संग्रहखोरी न हो, मनहूस न हो और स्वार्थी न हो। तो जितना संतुष्ट रहेंगे तो लोभ नहीं रहेगा। क्रोध पर जीत पानी है तो क्रोध का जो सूक्ष्म रूप है, चिड़चिड़ापन, आर्ग्यूमेंट करना, अधीरता, फोर्सफुल बातचीत करना, अपसेट हो जाना, सहनशील नहीं रहना और क्रोधी क्या करते करेंगे, जिसके साथ क्रोध होगा ना तो वो सामने आएगा ना, तो ओम शांति कहना पड़े या हेलो कहना पड़े, वो यहां से आता है तो वो वाला उस तरफ चले जाएगा, जैसे कि देखा ही नहीं है कि उसको आंख से आंख मिलानी पड़े। फिर अलबेलापन, तो अलबेलापन नहीं रखना है, हमें केयरफुल रखना है, क्योंकि हमारा समय, शक्ति, धन बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जो अलबेला है वो कहेंगे मैं भूल गया, और फालतू खर्च करेंगे समय, शक्ति, धन का, कहेंगे मैंने सोचा ये काम वो कर लेगा, तो ऑर्गेनाइज नहीं है, केयरलेस है, फिर आलस्य। तो देखना है कि आलस्य को छोड़कर हमें उमंग उत्साह में रहना है। जितना उमंग उत्साह में रहेंगे तो सुस्ती छूट जाएंगे, नहीं तो कहेंगे मैं तो थक गया हूँ। हाँ, बैठे रहेंगे, आराम पसंद होकर रहेंगे और दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ देंगे। ईर्ष्या, दादी हमेशा कहती हैं सारी रामायण की जड़ है ईर्ष्या, क्योंकि कैकेयी और उसकी दासी को ईर्ष्या थी कि राम को राज्य मिलेगा, तो इसलिए दशरथ राजा से प्रॉमिस लेकर भरत को राज्य दिया और राम को वनवास दिया, तो सारी रामायण उस पर चली। तो इसी रीति से देखते हैं कि एक दो से प्यार नहीं तो उसकी विशेषता देखकर कई बार ईर्ष्या होती है कि उसको तो सब प्यार करते हैं, उसको तो सब रिगार्ड देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं देते हैं, चांस नहीं देते हैं आदि आदि। परंतु यदि स्वमान में रहेंगे तो क्या होगा, स्वमान में रहने से हम दूसरे की विशेषता पहचानेंगे, उसे प्यार से देखेंगे और अपने समान में रहकर सेवा करते रहेंगे। और लास्ट में दसवां विकार है वैरभाव। तो ये देखना है कि हमारा किसी से वैर न हो। गाली देने वाला वो भी मित्र है, उसको गले लगाओ। निंदा करने वाला भी हमारा मित्र है जो हमें स्ट्रांग बनाता है। तो जिसका वैर भाव होगा ना, तो वो क्या करेगा, बोलेगा उसके विरोध या उसको मारपीट करेगा या उसकी बुराई जग जाहिर करेगा और बदला लेने की भावना रखेगा। तो इसलिए देखना है कि बाबा कहते हैं एक रावण हमारा दुश्मन है, बाकी सब हमारे मित्र हैं। तो ये भावना, रूहानी भावना हमारे में होनी चाहिए, और जितनी हमारे में ये रूहानियत आती जाएंगी तो क्या होगा, हम निर्विकारी बनते जाएंगे और हमारे आगे और सब झुकेंगे, हमें झुकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम झुकते रहेंगे और पतित के पतित रह जाएंगे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा जीवन हम ऐसा श्रेष्ठ बनाए जितना श्रीमत पर चलकर हम अपना जीवन श्रेष्ठ और पवित्र बनाएंगे, उतना हमें भी फायदा होगा। क्योंकि आज भी बाबा ने कहता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पवित्र बनो, सेवा करते रहो, याद करो, तो स्टेटस आपकी इतनी ऊंची बनेंगे। तो ये था आज क्या विषय पर क्लास। अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे।
आज का टॉपिक तो बहुत ही सुंदर, लगाव झुकाव और प्रभाव से मुक्त है ना, तभी हम फिर सत्यों की दुनिया में जाने के लिए लायक बन सकते हैं। पहले वो स्थिति यहाँ आवश्यक है। दीदी ने बहुत सुंदर हमको सबको बताया कैसे हम इन सभी चीजों से मुक्त रहे, ताकि फिर बाबा जो चाहते हैं वो हम ऐसे बन के दिखाएं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं पुरुषार्थ संबंधित, अगर आपको कोई क्वेश्चंस और देना हो तो लिख करके मुझे यहाँ दे सकते हैं 11:15 तक, जैसे टाइम है क्लास का तब तक हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। दीदी एक क्वेश्चन आया है, देह से डिटैच मुश्किल से 1 सेकंड के लिए कर लेंगे, लेकिन ज्यादा समय नहीं हो पाता है, तो ज्यादा समय के लिए हम देह से डिटैच कैसे अनुभव करें, उसके लिए क्या करें?
भक्ति में हम गाते थे, भगवान जब आप आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे, हम यदि 1 जन्म बलिहार जाते हैं तो बाबा 21 जन्म तक बलिहार जाते हैं। तो जब ये समझ में आते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, पहले तो देही अभिमानी बनना है, दूसरा ये देह बाबा ने मुझे दिया है शिवार्थ, ये बाबा का है। जब हमारा ये स्मृति रहती है या भाव रहता है, ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर बाबा के शिवा अर्थ है, तो क्या होगा, शरीर में रहते शरीर से हम न्यारी रहेंगे, क्यों, ये बाबा का शरीर है, तो बाबा की श्रीमत अनुसार उसको यूज करना, चाहे तन है मन है धन है। धन ऐसे नहीं मैं कमाता हूं, बस जो चीज अच्छी लगी खरीद लिया, ये नहीं, ये बाबा का धन है, तो बाबा से राय लेकर फिर करना है। हमारे सामने कई परिवार वाले ज्ञान में ऐसे थे कि जो कुछ करते थे बाबा से राय लेकर करते थे, कभी शादी में भी जाते थे बाबा ब्रह्मा बाबा के सामने पूछते थे, बाबा हम जाएं, बाबा हम शादी में जाते हैं तो कुछ देवे, पूछते थे। तो गृहस्थ में रहकर भी ट्रस्टी बनना ये एक आर्ट है, और ये आर्ट हमको हासिल करेंगे तो क्या होगा, हमारा हम भाग्य अनेक गुना बना सकेंगे।
दीदी कड़े से कड़े संस्कार को कैसे हम समाप्त करें?
पहले तो रियलाइज करना है, जब तक हम रियलाइज नहीं करें कि ये हमारी वीकनेस है, तब तक हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले रियलाइज करना है अंतर्मुख होकर कि मेरे में कौन सी वीकनेस है, कौन सा विकार है। दूसरा हमें दृढ़ता से उसको छोड़ना है, जब तक हम दृढ़ नहीं होकर कि मुझे ये छोड़ना ही है, तो टेंशन रखना है, दृढ़ता रखनी है। और योग के द्वारा ऑपोजिट्स गुण धारण करना है या शक्ति धारण करनी है। जैसे हमने कहा भाई ईगो है, तो हमें नम्रता धारण करनी है कि बाबा ने हमें ये विशेषता दी है तो बाबा की महिमा है, ना कि मेरी। या लोभ के लिए हमें अविनाशी ज्ञान धन मिल गया, अभी ये विनाशी टेम्पररी सुख के लिए हम क्यों पीछे पड़े। तो रियलाइज करके ऑपोजिट शक्ति जीवन में लानी है, टाइम लगेगा, परंतु हमें दृढ़ता से उसको छोड़ना है।
किसी आत्मा को डिप्रेशन से हम कैसे निकालें? अगर दूसरी आत्मा कोई डिप्रेशन में है, उसको संयोग हम कैसे करें निकालने के लिए?
मेन बात यह है कि बाबा कहते हैं अपने को खुश रखो। तो खुशी के लिए बाबा कहते हैं तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत हमारे पास हो जो हमें नशे में लावे, खुशी में लावे। दूसरा, अपने को फ्री नहीं रखो। जो बिजी होते हैं ना, उसको नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखो, चाहे स्थूल कार्य है, चाहे मनन मंथन चिंतन पढ़ाई, उसमें बिजी रखेंगे तो क्या होगा, मन में गलत ख्यालात नहीं आएंगे। नहीं तो डिप्रेशन में क्या होता है कि नेगेटिव ख्यालात अपने बारे में या अपनी परिस्थिति के बारे में नेगेटिव ख्यालात आते हैं। तो इसलिए बिजी रखना है। कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो जितना हम बिजी रहेंगे ना, तो फालतू ख्यालात नहीं आएंगे। और योग द्वारा अपने आप को याद दिलाना है, हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनने वाले हैं। ना दादी ना हमेशा कहते हैं, सोचो मैं कौन, किसका हूँ, क्या बनने वाला हूँ। तो ये नशा चढ़ाने वाले संकल्प अपने में को लाओ। और यदि 5-7 अपना पुरुषार्थ के बाद भी यदि डिप्रेशन नहीं जाता है, तो मैं तो राय देती हूँ कि साइकियाट्रिस्ट की या काउंसलर की सलाह लो, और अपना पास्ट का जो संस्कार है या जो स्मृति है उसको निकाल दो।
अभी समय प्रमाण हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए?
बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, अब घर जाना है। घर जाना है तो नेचुरली है, जो हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो ये लक्ष्य सामने रखकर तीव्र पुरुषार्थ करना। योग अमृत वेला पावरफुल, श्रीमत पर कदम कदम पर चलना है, मुरली मिस नहीं करनी है, और मुरली सुनकर मनन मंथन चिंतन धारण करना है, कर्मयोग। क्योंकि ऐसे तो नहीं कि हम सारा दिन योग में बैठ जाए, तो बैलेंस रखना है, योग भी करो, अपनी जिम्मेवारी भी करो, और सेवा और योग का बैलेंस भी रखो। तो इसी रीत से अपने ऊपर ध्यान रखकर अपने को मम्मा बाबा को फॉलो कर सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म ये हमको धारण करना है। ये घर जाने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। कभी भी अचानक शरीर छूट जाए तो हमें एवर रेडी रहना है।
अगर और किसी का भी प्रश्न है तो यहाँ आकर के टेबल पर रख देंगे। दीदी एक क्वेश्चन है, यज्ञ में संदेश में जाने का पार्ट केवल बहनों को मिली है, भाइयों को क्यों नहीं?
भाइयों को है या नहीं?
भाइयों को क्यों नहीं है ट्रांस में जाने का पार्ट, केवल बहनों को क्यों है?
ऐसे थोड़ी है भाई भी जाते हैं, हमारे जगदीश भाई।
अच्छा, जाते थे जगदीश भाई ट्रांस में?
जगदीश भाई जाते थे, हाँ जरूर। ज्यादा बहने जाती है,
हाँ।
क्योंकि बाबा ने बहनों को आगे रखा है शुरू से ही,
हाँ।
परंतु जगदीश भाई भी ध्यान में जाते थे और नशे में
अच्छा
डांस वगैरह करते थे।
तो बहने ज्यादा है?
ज्यादा बात
क्यों क्यों?
ड्रामा में पार्ट ऐसा ही है जैसे बाबा ने बहनों को आगे रखा है हर बात में, तो इसलिए बहनों को और उसमें भी समझो। देखो ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, फिर गुलजार दादी का पाठ रहा कि संदेश भी बने रही और बाबा का रथ भी बन के रही। तो शुरू से ज्यादा यही था संदेश ही ध्यान में जाती थी। और क्या है कि माताएं वो लव में लीन, भक्ति में भी आप देखेंगे मेजोरिटी सत्संग में माताएं होती है। ऐसे यज्ञ में भी हम देखेंगे ना तो 2/3 माताएं 1/3 भाई है ज्ञान में। हमारे विदेश में भी, क्योंकि मैंने सोचा चलो इंडिया में माताएं बेचारी फ्री है, नौकरी नहीं धंधा नहीं, इसलिए ज्यादा सत्संग में आती है, परंतु विदेश में भी 2/3 माताएं 1/3 भाई, क्योंकि भाइयों को विदेश में तो समझते हैं कि ये सत्संग तो जो वीक लोग हैं ना वो सत्संग करते हैं, हम तो भाई लोग कहेंगे हम तो नशा करेंगे शराब लेकर कहाँ हम, हाँ ये ज्ञान का नशा चढ़ाएंगे या ये नशा नहीं करना है, मेडिटेशन से हमें अपनी उन्नति नहीं करनी है, हम शराब पी के अपने को दुख भूल जाएंगे।
व्यर्थ संकल्प करने की विधि, संकल्प कम करने की विधि क्या है? संपूर्ण रूप से व्यर्थ को खत्म करने की विधि क्या है?
व्यर्थ संकल्प खत्म करने के लिए हमें अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है और ज्ञान का मनन मंथन करना है, ये और वैल्यू समझना है हमारे संकल्प समय शक्ति की, क्योंकि समय थोड़ा है, हमको थोड़े समय में अपनी संपूर्ण अवस्था बनानी है, तो इसलिए बचत योजना बनानी है कि हम समझो थोड़े ही समय में संकल्प ने अपना जो अपने को एक्सप्रेस करना है, समझो ज्ञान देना है, यदि 2 सेंटेंस में काम चल सकता है 20 सेंटेंस नहीं बोलना है। हाँ, यदि हमको धन है इकोनॉमी से यूज करना है तो धन है, वाणी है, समय है, संकल्प है, हमारे अविनाशी खजाने हैं, तो जैसे जिसके पास खजाने होते हैं ना, वो क्या करते हैं, संभल संभल का यूज करते हैं, और जिसका बड़ा परिवार होता है ना, तो बजट बनाते हैं कि हमको इतना खर्च इस पर करना है, इतना खर्च इस पर करना है, इसका खर्च इतना पर करना है, तो इसी रीत से बचत स्कीम बनाते हैं, तो इसी रीत से हमें संकल्प समय तन मन धन सबके इकोनॉमिक करनी है और सफल कर सफलता को पाना है, तो इसलिए बाबा ने हमको सेंसिबल बनाया है, समझदार बनाया है, तो समझ से हमें अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है।
दीदी एक प्रश्न आया है, बाबा भी अच्छा लगता है और माया भी अच्छी लगती है क्यों, किसको माया अच्छी लगती है बताओ
क्या है,
क्यों ऐसा होता है, बाबा भी अच्छा लगता है क्योंकि माया की तरफ भी चले जाते हैं।
माया है ना, आकर्षित रूप से आती है, गुप्त रूप से, जैसे बाबा है गुप्त है, माया भी गुप्त रूप में आकर्षित रूप में आती है, तो हमको धोखा देती है, आकर्षित करके हमको अपनी तरफ खींच लेती है, तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है। आज भी बाबा ने कहा ना कि माया के भी नॉलेजफुल बनो, नहीं तो माया खींच लेंगी, तो इसलिए माया के नॉलेजफुल बनना है और माया का वार ना हो, माया को भी अपनी दासी बनाना है, तो जितना हम माया को पहचान कर सर्वशक्तिवान से अपना नाता जोड़ेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रकृति जीत माया जीत बनेंगे।
दीदी जब योग करते हैं तो कभी कभी योग बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहरा जैसे एकाग्र होकर के योग करते हैं अनुभूति अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी अच्छी नहीं भी होती है, ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है?
योग में फ्लक्चुएशन इसलिए होता है कि हम में पूरा वैराग्य नहीं। यदि विराग्य है और त्याग किया है तो बेहद का वैराग्य त्याग है तो तपस्या सहज होंगी। क्या होता है वैराग्य नहीं है तो मन इसके ऊपर आकर्षित हो जाता है और हम उसमें फालतू अपना समय और शक्ति गंवाते हैं। मिसाल के तौर पर माताएं हैं, अब वैराग्य नहीं है तो रास्ते में जाते जाते सोचेंगे चलो फैशन कौन सी है, आजकल कौन सा ड्रेस की नई नई डिजाइन है, नया नया कलर है, तो उसमें देखेंगे फिर सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है मुझे खरीदनी चाहिए, कब खरीदे, कैसे खरीदे, कहाँ सस्ती मिलती है, तो अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं। और हमारा योग बाबा के साथ लगने के बजाय उस ड्रेस पर लग जाता है, तो इसलिए देखना है कि हमारे में पूरा बेहद का वैराग्य हो कि कल जाकर सतयुग में हम क्या बनेंगे, क्या होगा, ड्रेस कैसी होंगे, विमान कैसे होंगे, तो आज के मर्सिडीज BMW क्या है, कल तो हमारे घर में विमान होंगे। तो जब ये बुद्धि में ज्ञान है कल बाबा हमको क्या बनाते हैं, क्या देते हैं, तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य सहज आ जाएंगे।
बाबा बीज रूप स्थिति के बारे में बताते हैं, तो बीज रूप की स्थिति की अनुभूति हम क्या कैसे करें, अनुभव कैसे करेंगे, है क्या बीज रूप स्थिति?
हमें धीरे धीरे पहले तो देही अभिमानी का अभ्यास पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ ये अभ्यास पक्का रखना है, फिर धीरे धीरे फरिश्ता स्थिति, अपने आप को फरिश्ता समझना है, फिर धीरे धीरे बिंदु, स्पेशली जब बाबा की याद में बैठते हैं ना, बिंदु बनकर बिंदु को याद करना है, स्पेशली अमृत वेला बिंदु बन जाओ और बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। तो इस रीत से धीरे धीरे अभ्यास करके ज्यादा जस्ट स्पेशली योग में बैठते हो तब बिंदु रूप की स्थिति रखो, चलते फिरते फरिश्ता रूप स्थिति का अभ्यास करो। तो जितना जितना अभ्यास पक्का करते जाएंगे उन्नति होती जाएंगी।
लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बाबा कहते हैं, तो उसकी विधि क्या है और उसी के कनेक्टेड बाबा जो लास्ट कहते हैं, लास्ट शब्द यूज करते हैं, इसमें लास्ट का अर्थ क्या है, यानी वो संख्या, अभी लास्ट का समय बोर्ड लग गया, यज्ञ की कितनी संख्या के बाद लास्ट बोला जाएगा, क्या है ये लास्ट, और लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने की विधि क्या है?
लास्ट माना जो पीछे आए हैं ज्ञान में, वो यदि फास्ट जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो वो फर्स्ट यानी आगे आ सकते हैं। तो लेट का बोर्ड काफी समय से तो लग गया था, अभी जब से अव्यक्त बाप दादा के व्यक्त में मुलाकात बंद हो गई, तब से टू लेट का बोर्ड भी लग गया है। अभी तीव्र पुरुषार्थ क्या है? तो अमृत वेला पावरफुल, मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, मुरली पढ़ते अध्ययन करते मनन मंथन धारण करते जाएंगे, फिर निरंतर योगी रहेंगे, श्रीमत का एक्यूरेट पालन करेंगे और लक्ष्य सदैव सामने हो, बाप समान बनना है। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना ही है, यह लक्ष्य क्लियर हो, उस अनुसार पुरुषार्थ हो और बेहद वैराग्य वृत्ति हो, पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करना है, तपस्या और अथक सेवा, चार सब्जेक्ट हमारे जो है उस पर पूरा अटेंशन हो और संपूर्ण समर्पण। तो जितना हमारा अटेंशन होगा ना, तो हम उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, तो 8 की रोजरी में आना तक चांस नहीं। अभी जो लास्ट आएंगे 108 में चांस,
फिर भी चांस है अभी 108 में,
108 में 16,108 में चांस।
ये लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि संपूर्ण समर्पण की बात आपने कही, उसके कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया है। समर्पण करने से बेफिकर बादशाह की अनुभूति होती है, जब समस्याएं समर्पण कर देते हैं बेफिकर हो जाते हैं, पर सिचुएशन पर फिर वापस जब परिस्थितियां आती हैं फिर हम फिक्रार्थ में आ जाते हैं, मतलब फिक्रार्थ फिर बेफिकर ऐसे इसमें आता है। तो ये समर्पण ऑलवेज रहे, हमेशा रहे समर्पण भाव, तो वो परमानेंट कैसे हम रख सकते हैं समर्पण भाव? अगर परिस्थिति आती है तो फिर चिंता में लग जाते हैं,
चिंता लग जाती है बीच बीच में
चिंता लग जाती
है। मेन बात ये है, इसका मतलब रियली सरेंडर नहीं किया है, समझते हैं मैं करता हूं, तो उसमें जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो नेचुरली है फिकर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं और मेरा छोड़ दो, मैं निमित्त हूं ये बुद्धि में रखो, और गृहस्थी हूं ये नहीं ट्रस्टी हूं, ये सदैव याद रहे कि ट्रस्टी हूं, बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूं। तो जितनी ये स्मृति पक्की होती जाएंगी तो समर्पण भाव भी पक्का होता जाएगा।
वैसे तो और भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन समय को देखते हुए उन प्रश्नों को हम नहीं ले पाएंगे, और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, पर्सनल समस्याओं के बारे में भी क्वेश्चन है, तो उसको आप कोई भी बड़े बड़े जैसे सूरज भाई है या कोई महारथी है तो उनसे आप पर्सनल मिल करके उन प्रश्नों का उत्तर आप ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया इसमें। तो जनरल सभी को जो लाभ मिलने वाले जैसे प्रश्न है पुरुषार्थ के संबंधित, उन्हीं प्रश्नों को लिया। और कुछ प्रश्न भी रह गए हैं, जरूर आप जाने से पहले मैं आशा करती हूँ उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए। अब हम दो मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं एक हाथ की थाली से।